ईशान छत पर अकेला खड़ा था। रजनी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और नाराजगी से पूछा, ईशान तुम नीचे क्यों नहीं आए कशिश को छोड़ने? ईशान ने ठंडी आह भरी और भीखी मुस्कान से बोला, नहीं आया तो कौन सा उसका जाना टल गया, चली तो वो गई ही। वैसे भी सब तो थे ही उसके पास, मेरे नहीं होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा। उसके शब्दों में नाराजगी झलक रही थी। रजनी पहले तो चौंक गई, फिर गंभीरता से बोली, सब थे पर तुम नहीं थे, और तुम उसके लिए हम सबसे कहीं ज्यादा अहमियत रखते हो। तुम अकेले हम सबकी जगह का खालीपन भर सकते हो, पर हम सब मिलकर भी एक तुम्हारी जगह नहीं ले सकती उसकी जिंदगी में। पति हो तुम उसके, हमसे तुम्हारी बराबरी ही क्या है? तुम हो तभी तो हम सब हैं उसके पास, तुम सबसे ज्यादा अहम हो। पता है तुम नहीं आए थे, पर उसकी नजरें तुम्हें ही ढूंढ रही थी, कितनी उदास हो गई थी वो जाते हुए। रजनी की बात सुनकर ईशान की आंखों के सामने वो पल आ गया। जब कशिश ने उससे निगाहें चुरा ली थीं, पर आंखों में आई नमी को छुपा नहीं पाई थी। उन आंखों में अनकही शिकायत थी, जिसे शायद ईशान समझकर भी अनजान बना रहा था। ईशान को गहरी सोच में खोया देखकर रजनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चिंता से पूछा, क्या हुआ ईशु, कोई बात है क्या? जब से कशिश के जाने की बात उठी है तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे अपने दिल की उलझन साझा करो, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल दे सकूं। ईशान ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा, फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोला, दीदी माँ ने जो किया, इस परिवार ने जो किया, उसके बाद आपको रिश्तों से डर नहीं लगता? आपको घर में किसी से कोई शिकायत नहीं, माँ से कोई गिला शिकवा नहीं? शादी को लेकर डर नहीं लगता कि अगर जो पापा के साथ हुआ वो आपके साथ हुआ तो क्या होगा? ये सवाल सुनकर रजनी हैरान हुई, पर ईशान की उलझनों को समझ भी रही थी। वो हौले से मुस्कुरा दी, ईशु डर वहाँ होता है जहाँ अविश्वास हो, भरोसे और एतबार की कमी हो। अभिषेक को तो तुम भी जानते हो, उसने इतने सालों मेरा इंतज़ार किया है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें भी नहीं, क्योंकि कशिश माँ जैसी नहीं है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। रही बात माँ और घर वालों से नाराज़गी की, तो माँ ने जो किया वो अपनी खुशी के लिए किया, और दुनिया में हर इंसान को अपनी खुशी चुनने का अधिकार है, इसलिए मैं उनसे नफ़रत नहीं करती, पर उनके कदम के कारण पापा को जो कुछ सहना पड़ा उसे कभी भुला भी नहीं सकती। शिकायत है जो कभी खत्म नहीं होगी। इस परिवार से भी शिकायत थी मुझे, पर कई बार नाराज़गी सामने वाले से ज़्यादा हमें तकलीफ़ देती है, इसलिए अगर सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो और वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो वक्त रहते उन्हें माफ़ करके अपने दिल को साफ़ कर लेना चाहिए। रजनी थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तुम खुद सोचो, पापा सालों कोशिश करते रहे सबकी नाराज़गी दूर करने की, ताकि ये परिवार फिर से एक हो सके, और अब जब सालों बाद उनकी वो अधूरी इच्छा पूरी हुई है, तो ऐसे में अगर मैं मन में बदगुमानी रखूंगी तो ये परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। पहली गलती उन्होंने की, पापा को उस गुनाह की सज़ा देकर जो उन्होंने किया ही नहीं था, और दूसरा गुनाह हम करते, सबकी माफ़ी मांगने के बावजूद उन्हें सज़ा देकर। रिश्तों में कड़वाहट वक्त के साथ बढ़ती रहती है, और ये सिलसिला यूं ही सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। जैसे हमने संघर्ष किया, हमारी आने वाली पीढ़ी भी रिश्तों में नाराज़गी के साथ जीती। फिर जब एक माफ़ी से सब ठीक हो सकता है तो माफ़ी देने में हर्ज ही क्या है? सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, फिर हम तुम तो मामूली इंसान हैं। पर मैं किसी को भी माफ़ नहीं कर पाता दीदी, मैं वो सब नहीं भुला पाता जो पापा ने सहा, ईशान ने बेबसी से कहा। रजनी हौले से मुस्कुराई, जानती हूँ, और इसकी वजह है पापा के लिए तुम्हारा प्यार। मैंने सबको माफ़ किया ताकि पापा की वो अधूरी इच्छा पूरी हो जो उनके साथ साथ मेरी भी इच्छा थी, पर तुमने छोटी उम्र से सबका जो रवैया देखा वो तुम्हारे मन की गहराइयों तक बस गया है, और उसे निकलने में वक्त लगेगा। वक्त बहुत बलवान है, अच्छे अच्छे को रास्ते पर ले आता है और बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। वक्त के साथ तुम्हारी नाराज़गी भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दीदी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सबको माफ़ कर सकूंगा। तुम मत करना माफ़, लेकिन इन रिश्तों को दोबारा बिखरने भी मत देना, इतना तो कर सकते हो। ईशान चुप रहा। रजनी कुछ देर उसके चेहरे के भावों को पढ़ती रही, फिर संजीदगी से बोली, ईशु एक बात सच सच बताओ, कशिश से कैसा रिश्ता है तुम्हारा? क्या अब भी माँ ने जो किया उसके वजह से तुम कशिश और इस रिश्ते को अपना नहीं पा रहे हो? ईशान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि रजनी ऐसा सवाल करेगी, पर उसने जवाब दिया, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, हालांकि मैं वो सब भूला नहीं हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि कशिश माँ जैसी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। पर वो खुद इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। क्या बताता रजनी को कि धोखे से डरता है वो आज भी?
अतीत के जख्म इतने गहरे हैं कि भरते ही नहीं। कशिश पर विश्वास है, पर शादी जैसे रिश्ते पर से उसका मन उठ गया है। कशिश से रिश्ता तो उसने जोड़ा था, और कुछ महीनों बाद इस रिश्ते की एक्सपायरी डेट है। उसके बाद कशिश और उसे जुदा होना होगा, यही फैसला किया था दोनों ने। पर अब मन उसे खुद से दूर भेजने के ख्याल से बेचैन हो जाता है। अतीत की बेड़ियों में इतना जकड़ा है कि हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा और खुद में ही उलझ गया है। शायद अगर ईशान ने अपनी बात रजनी से कही होती तो वो समझाती उसे कि अतीत को कस के पकड़कर बैठने से जिंदगी नहीं चलती। भले ही अतीत को भुलाया नहीं जा सकता, पर उसे एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। जिन यादों से तकलीफ हो, उनके लिए अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों से मुंह नहीं मोड़ा जाता। वो समझाती उसे कि अपने दिल की सुने और कशिश को खुद से दूर जाने से रोक ले। पर अफसोस कि ईशान कुछ कह नहीं सका और ये सारी बातें अनकही और अनसुनी ही रह गईं।